ओम शांति। वर्तमान का एक बहुत सुंदर सत्र है, कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज। कैसे चुनौतियों को हम अवसर में परिवर्तन करें, एक बहुत ही सुंदर इंटरैक्टिव सेशन है। इसलिए सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप सभी थोड़ा आगे आगे आ जाएं, ताकि एक्टिविटीज में आप सभी पार्टिसिपेट कर सके। जो बहुत पीछे पीछे बैठे हैं, उन सबसे अनुरोध है आप कृपया आगे आगे आ जाएं, और जो किसी भी कारण से बाहर जा रहे हैं, उनसे अनुरोध है आप शीघ्र ही हॉल में आकर पहुंचे। एक बहुत सुंदर, आप यदि जा रहे हैं कि शिवानी दीदी से आप मिल सके, तो आपसे अनुरोध है कि इस उम्मीद से आप ये सेशन को छोड़ के न जाए, क्योंकि दीदी आगे के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगी। तो आपसे अनुरोध है कि आप सभी कृपया बैठे, एक बहुत सुंदर गीत बजेगा, आप उसके लाइन को, शब्दों को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि ये सत्र हमें किस दिशा में एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। आप सभी गीत का भरपूर आनंद लें।
यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना
चुनौतियों से कभी हारना नहीं, जीने से पहले कभी मरना नहीं। इस जहां में पांव तेरे खींचेंगे कई, पर बढ़े जो कदम उसे पीछे करना नहीं, बढ़े जो कदम उसे पीछे करना नहीं। हम सभी बहुत अच्छे से समझते हैं, अनुभवी हैं, कि हर एक के जीवन में चुनौतियां आती ही हैं, और वो चुनौतियां अंत तक आती ही रहेंगी। पर उन चुनौतियों के बीच हम अपने कदम को कितने अच्छे से आगे ले पाते हैं, उन चुनौतियों के बावजूद भी हम सफलता के शिखर पर कितना पहुंच पाते हैं, वो हमारी काबिलियत के ऊपर निर्भर करता है। चलिए वर्तमान की एक जो एक बर्निंग सिचुएशन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम सभी जानते हैं 28 फरवरी 2026 को जब ईरान पर हमला हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके बाद हार्मुज से जो तेल का आयात है, उस पर काफी प्रभाव पड़ा, और वो एक ऐसा स्थान है जहां से भारत का 55% तेल आता था, और उसका नतीजा आपने सुना कि हमारे नीचे होने वाले कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। यहां पर माउंट आबू में राजस्थान के माननीय राज्यपाल महोदय जी का आना था, उनका गश्त रद्द कर दिया गया, और पूरे देश भर में, पूरे विश्व में इसका प्रभाव हम और आप सभी देख रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, इस चुनौती में जहां पर पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, यथासंभव वर्क फ्रॉम होम करने के लिए, उसको प्रायोरिटी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, इस चुनौती में अपॉर्चुनिटी क्या छिपी हुई है, बताएंगे आप कोई? हां जी, अल्टरनेट सोर्स को फाइंड आउट किया जा रहा है। और भी कोई बताना चाहेंगे? यस प्लीज। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। और भी कोई अपॉर्चुनिटी है इसमें? सौर ऊर्जा को बढ़ावा हम दे रहे हैं, वाओ टू गुड। और भी कुछ? और भी कुछ? हां जी, यस। हम ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं हमें आत्मनिर्भर होने के लिए भी मजबूर कर रही हैं। कहने का भाव है, हर चुनौती में कुछ अवसर छिपा हुआ है। और ये जो चुनौती हमारे सामने आई है, इस चुनौती का ये रिजल्ट आया कि आज की तारीख में 70% तेल 40 देशों से आ रहा है, जबकि हमारी निर्भरता केवल कुछ ही देशों पर थी। अब इसका नतीजा ये हुआ कि 70% तेल हमारे 40 देशों से आ रहा है। और अभी रीसेंट न्यूज यदि आपने सुना होगा, वेनेजुएला ने भारत को ये ऑफर किया है कि आपके तेल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है, हमें इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उस छिपे अपॉर्चुनिटी को केवल ग्राप करने की जरूरत है। हमारे साथ माधुरी बहन है, तो मैं माधुरी बहन से पूछना चाहूंगी, क्या आपके नॉलेज में, आपके समझ में ऐसा कोई सुंदर सा उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करे कि चुनौतियों में हमें अवसर को ढूंढकर कैसे और आगे निकल जाना चाहिए?
अस्मिता बहन ने बहुत अच्छी वर्तमान समय की बात बताई कि वर्तमान समय कौन सी पूरे विश्व के आगे चुनौती है और चुनौतियां ही किस तरह से हमारे लिए एक अवसर बन जाती हैं। मैं एक छोटा सा सवाल आप सभी से पूछती हूँ। गाड़ी तो सभी चलाते हैं और गाड़ी में ब्रेक जरूर होता है ना, तो ब्रेक किस लिए होता है? स्पीड को कम करने के लिए, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए। पर आपने कभी ऐसा सोचा है कि ब्रेक एक्चुअल हमारी स्पीड को बढ़ाने के लिए होता है? मान लीजिए आपकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, तो आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाएंगे? चला पाएंगे? ये तो ब्रेक किस लिए है? ताकि आप गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड में चलाए और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच सके। जीवन में आने वाली चुनौतियां भी ब्रेक की तरह होती हैं, जो हमें रोकने, पीछे करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें स्पीड से आगे सुरक्षित पहुंचने में मदद करने के लिए होते। तो आप में से किसी ने भी कभी भी अपनी लाइफ की जो ब्रेक है, जो चुनौती आई है, उनका कभी शुक्रिया किया है? अगर नहीं किया है, किया है, यस, बहुत बढ़िया। अगर उन चुनौतियों का नहीं किया है आपने शुक्रिया, तो आज जरूर कीजिए। अगर ऐसी कोई लाइफ में सिचुएशंस आई है और आप अगर थोड़ा सोचेंगे ना, तो एक्चुअल वो चुनौतियां कहीं ना कहीं क्या कोई ऐसी चुनौती से हमें ऐसा लगता है कि हाँ, इससे ये हमें बेनिफिट मिला या ये अवसर मिला? वैक्सीन बनाई गई, यस जी, कम हो गए, यस जी, फैमिली के साथ टाइम दे पाए, अच्छा, कितनी अच्छी बात है। पहले जॉब करती थी, अब कोविड के बाद से ब्रह्मा कुमारी बनकर सेवाएं दे रही हैं जी, यस, हेल्दी लाइफ हो गई, नए नए बिजनेस स्टार्ट किए, यस, आयुर्वेद की तरफ ध्यान गया, खाना बनाना सीख लिया भाइयों ने, कितनी अच्छी अच्छी बातें हुई ना, चुनौतियां थी पर अवसर कितने अच्छे लिए जा सकते। ऑनलाइन ऑनलाइन वाला प्लेटफॉर्म, जी 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 जी, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। दिल्ली और दिल्ली जैसे शहर वालों ने साफ हवा क्या होती है उसको टेस्ट किया, आसमान खुला और उसमें चांद सितारे अच्छी तरह से सभी ने देखे, जो पंछी कभी नहीं आते थे तालाबों में और ऐसे स्थानों पर वो सारे पक्षी दिखाई देने लगे, शोर कम हो गया। कितने सारे फायदे हैं अगर वो सारे फायदे देखे जाए तो। सचमुच कोविड एक प्रकार से कोई चुनौती नहीं लगती पर बहुत कुछ हमें जैसे वो सिखाने आई थी। जी, बहुत सारे फायदे ऐसे देखा जाए तो भारत ने अपने आप को एक एग्जाम्पल बनाया दुनिया के सामने, क्योंकि जो मेडिसिन भारत ने बनाई, वैक्सीन बनाया, वो पूरे देश में काम आया। तो वास्तविकता में देखा जाए तो चुनौतियां कभी भी सिर्फ पीछे ढकेलने नहीं आती है, पर जीवन में मुकाम तक पहुंचने के लिए, आपको स्पीड देने के लिए आती है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो हम यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है तो वो चुनौती, पर चूंकि ये हमारा जो सेशन है ना, ये हमारा लेक्चर सेशन नहीं है, इसमें आप सभी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, इसलिए अस्मिता बहन ने हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि जो पीछे बैठे अगर आगे आ जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ जो भी एक्सरसाइज सेशन होंगे उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दे सकते हैं। और यहाँ इस सेशन में हम एक फैमिली गैदरिंग की तरह बैठे हैं, है ना, लेक्चर सेशन नहीं, इसलिए दूर बैठने की जरूरत नहीं है। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है अगर पीछे वाले आगे जाए तो आगे आ जाए तो अच्छा होगा। तो अभी जो हम एक्टिविटी करेंगे इसमें हमें 8-8 भाई बहनों के 4 ग्रुप चाहिए। तो पहले इधर से 8 लोग कोई आ जाइए स्टेज पे, सिर्फ 8 मेंबर्स इधर, और इधर से 8 मेंबर इस साइड आ जाए, बहने आ जाए इधर 8, यहाँ भाई आ जाए, इधर बहने 8 आ जाए, चप्पल सुतार के आएंगे, सभी चप्पल सुतार के आएंगे नीचे, आइए 8 बहने कोई भी सामने आ जाइए स्टेज पर। एक और आ जाइए, अच्छा 8 और भाई यहाँ नीचे एक ग्रुप बनाइए, आइए 8 भाई इधर पीछे जो बैठे हैं आ जाइए, काफी सारे यूथ भी हैं हमारे इंजीनियर साइंटिस्ट, आइए यहाँ पे एक 8 भाइयों का ग्रुप बनाइए, ऐसी बहनों का एक ग्रुप यहाँ 8 का बनाइए। अच्छा भाई आ रहे कोई बात नहीं, यहाँ बना लीजिए ग्रुप, भाई और बहने यहाँ ग्रुप बना लीजिए एक 8 का, ठीक है। ये वायर थोड़ा हटा लेंगे क्या, उनको बोल दीजिए पैर में फंसेंगे वायर इधर घूम के निकलते हो, बलून लाने पड़ेंगे। डिंपल बहन बलून दे देंगे, देखिए अभी ये 8-8 का ग्रुप है, ठीक है, आप सभी टीम है, अच्छा इसमें ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप 8 और वो 8 और नीचे भी 8-8 के 2 ग्रुप है, तो आप एक टीम है सभी, ठीक है, ये 4 टीम है हमारी। अब इसमें कौन विनर होता है देखेंगे, आप सभी को हम कुछ गाइडलाइन जो बता रहे हैं और साथ साथ फिर कुछ कमांड देंगे, उस हिसाब से आपको उन कमांड्स को फॉलो करना है। अभी क्या करना है, आप 8, आपको ऐसी टीम बनानी, चाहे आप राउंड बनाओ, सर्कल बनाओ, चाहे स्क्वायर बनाओ, चाहे इकट्ठे रहो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको 1 मिनट का मैं टाइम दूंगी, आप आपस में डिसाइड करके आपके ग्रुप को कैसे सेट करना है वो आप करेंगे। ये जो बैलून है आपको इसको हवा में उड़ाना है, ठीक है, और आप 8ों को एक ग्रुप के अंदर, वो बैलून को नीचे नहीं गिरने देना है, और हर एक को उसमें सपोर्ट करना है, ऐसे नहीं एक ही व्यक्ति नहीं करेगा, हर व्यक्ति उसमें सपोर्ट करेगा, एक व्यक्ति 2 से ज्यादा बलून को टच नहीं करे, कोशिश करे, ठीक है। तो बलून को नीचे नहीं गिरने देना है, और जब आप बलून को ऊपर उड़ा रहे उस समय हम कुछ कमांड्स देंगे, उन कमांड्स को आपको इमीडिएट फॉलो करना है, ठीक है। अब 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आपस में आप लोग ग्रुप डिस्कशन करके, इसमें 8 नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 आ जाइए कोई इसमें, हाँ 1 आ रहे हैं, 1 कोई और आ जाइए, कोई भी एक बहन आ जाइए ताकि 8 पूरे हो जाए, ओके आ जाइए, ठीक है। आप डिसाइड कीजिए आपको राउंड में खड़े होना है, नजदीक आकर खड़े होना है, दूर होकर, बलून नीचे नहीं गिरना चाहिए, और जो हम कमांड देंगे आपको इमीडिएट उस कमांड को बलून ऊपर उड़ाते हुए फॉलो करना है, ठीक है? जितनी बार भी, कम से कम मतलब दो बार तो एक व्यक्ति करे, उससे ज्यादा एक ही व्यक्ति न करे। इसलिए बलून जितनी देर आप यहां इस गेम में है, बलून नीचे नहीं आना चाहिए बस जमीन पर, ठीक है? जितनी बार करना है, पर सभी एक दूसरे का सहयोग देंगे, ठीक है? आप अपने हिसाब से राउंड बना लीजिए, जिधर भी खड़े होना है हो जाइए, बस बैलून नीचे नहीं आना चाहिए।
ग्रुप को जीतना भी है और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका भी देना है।
ठीक है, स्टार्ट करें, स्टार्ट कीजिए, ऊपर उड़ाइए हवा में, हल्का कीजिए, ज्यादा ऊपर मत कीजिए, थोड़ा फास्ट करेंगे पर बलून नीचे आएगा। तो अब आपको करना है, एक ही हाथ को यूज करना है, एक हाथ पीछे कर लीजिए, कोई भी एक हाथ पीछे कर लीजिए, ठीक है? बात नहीं करना है, आप साइलेंस में करेंगे, ज्यादा ऊपर मत कीजिए, नीचे कीजिए। अब आपस में दो दो का पेयर बनाएंगे, बलून न गिरे पर दो दो का हाथ पकड़ेंगे एक दूसरे का हाथ। दो पेयर बनाइए हाथ पकड़ के, हाँ पेयर बनाइए अपने, दो दो हाथ पकड़िए, दो दो का पेयर, आपस में दो लोग हाथ पकड़ेंगे और एक हाथ से आपको बलून को ऊपर करना है। आपस में हाथ पकड़िए, अब नीचे बैठ जाइए, खड़े नहीं होना है, नीचे बैठना है सभी को। आउट, एक ग्रुप आउट हो गया है। अभी सिर से करना है आपको, खड़े हो जाइए और सिर से बलून को उड़ाना है, हाथ नहीं लगाना है, दोनों हाथ पीछे, तो हाथ नहीं लगाना है, हाथ पीछे, बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा चल रहा है दोनों ग्रुप का। देखिए सिर न टकराए बस आपस में। ये ग्रुप का आउट हो गया ना, क्योंकि इनका बलून तो बाहर चला गया। ओके, बहुत बढ़िया। एक ही ग्रुप हमारा भाइयों का है स्टेज पर, आउट आउट, हाथ नहीं लगाना था। हाथ नहीं लगाना, सिर्फ सिर से, हाथ नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए ये ग्रुप हमारा विनर है, जोरदार तालियां इस ग्रुप के लिए। चुनौती इतनी अच्छी लग रही कि सोच रहे छोड़ेंगे ही नहीं, करते रहिए, हम आगे सेशन कर देते चालू।
आप विनर बन गए, यस, पुनः एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।
ये एक्टिविटी एक्चुअली हमें सिखाती है कि चुनौतियां तो बदलती रहती हैं, लेकिन सहयोग और परिस्थिति के अनुकूल होकर चलना ये चुनौतियों को अवसर में बदल देता है। तो आप सभी ने बहुत अच्छा कॉपरेट किया, आप सभी के लिए जोरदार तालियां एक बार। तो जिंदगी में चुनौतियां तो आती रहती हैं, एक सी नहीं, हमेशा बदलती रहती है। मान लीजिए अगर जिंदगी आपको खट्टे नींबू दे, सुनेंगे सभी ध्यान से, अगर जिंदगी आपको खट्टे नींबू दे तो आप क्या करेंगे? चटनी बना देंगे, यस, और नींबू पानी बना देंगे और अचार बना लेंगे, सब अच्छी लगने वाली चीजें है ना। जूस में भी डाल देंगे, फ्रूट्स में भी डाल देंगे, हर जगह उसको यूज करेंगे। तो उत्तर तो बड़े अच्छे दिए, पर प्रैक्टिकल में जब लाइफ में चुनौती आती है तो वो नींबू की तरह खट्टी ही तो होती है, पर क्या हम उसका शरबत बनाते हैं या फिर हम उसका अचार बनाकर उसको अच्छे से चटकारे लेकर खाते हैं, आनंद लेते हैं उसका। जीवन में चाहे परिस्थितियां नींबू की तरह खट्टी ही क्यों ना हो, परंतु आपकी सोच जो है, सकारात्मक सोच, उस खट्टाई को भी उपयोगी चीज में बदल सकती है। हम इसी को कहते हैं कि चुनौतियों को अवसर में बदलना, और इसके लिए आपको अपनी सोच को बदलना होगा। अगर हम बात करें हमारी संस्था की, तो आज इस संस्था को, तो हमारी संस्था जो है वर्तमान समय हम देखते हैं कि विश्वव्यापी संस्था है हमारी, और आप संस्था के हेडक्वार्टर में ही बैठे हैं और संस्था के यहाँ पर सारे कार्यक्रम और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज ये संस्था जिस मुकाम पर पहुंची है, क्या ये बहुत आसानी से यहां तक पहुंच गई है? बहुत चुनौतियां आई है इसके सामने भी। आज ये एकमात्र ऐसी संस्था है जो बहने जिसको चलाती है, विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है। लेकिन जब इसकी शुरुआत 1936 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा प्रारंभ हुआ इस संस्था का, एक छोटे सा सत्संग के रूप में, ओम मंडली के रूप में, उस समय इसके आगे बहुत सी बाधाएं, बहुत सी परिस्थितियां आई। पैकेटिंग किया गया, धरने दिए गए, जहां सत्संग चलता था उस भवन को आग तक लगा दी गई। जो माताएं बहनें सत्संग में आती थी उनके साथ भी बहुत दुराचार दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें बहुत कष्ट दिए गए ताकि वो सत्संग में न आ सके। ये सारी परिस्थितियां पिताश्री ब्रह्मा बाबा के बारे में भी बहुत कुछ बातें समाचार पत्रों में विश्व स्तर पर लिखी गई, अपमानजनक बातें, असत्य बातें, पर फिर भी पिताश्री ब्रह्मा बाबा हमेशा अचल अडोल रहे और हमेशा अपनी सकारात्मक सोच से निरंतर आगे बढ़ते रहे। जितनी भी चुनौतियां थी, जितना भी लोगों का विरोध था, पर वो कभी वायलेंस नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा पिता तो हमें अहिंसा सिखा रहे हैं। तो कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया, परंतु उन्होंने उस समय जितने भी सत्संग में आने वाले लोग थे, माताएं बहनें भाई थे, बच्चे थे, उन सभी को एक बहुत ही सुगम मार्ग, था तो वैसे कठिन, पर एक मार्ग प्रशस्त किया 14 साल की तपस्या का, आध्यात्मिकता से अपने आप को परिपूर्ण करने का, भरने का, वो त्याग तपस्या का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। और उस समय 14 साल कोई अपने घर भी नहीं गए, इवन बाहर गलियों में भी क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चला, इतने तपस्या में लीन हुए और अपनी आंतरिक शक्ति को इतना जागृत किया, इतना अपने आप को प्रबल किया उन्होंने, कि धीरे धीरे जो है समय के साथ परिवर्तन होता गया। और आज उस समय जो शक्ति उन्होंने आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर भरी थी, वो शक्ति आज भी यहाँ इस संस्था को चला रही, फाउंडेशन वही है जिस वजह से आज संस्था यहाँ तक पहुंची है। तो मूल रूप से पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने यही सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चुनौतियां कैसी भी हो, पर हमेशा सकारात्मक सोच कर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी हस्तियां ऐसी हैं। जीवन में कोई भी व्यक्ति ऊंचाई पर ऐसे ही नहीं पहुंचता है, कुछ न कुछ जीवन में चुनौतियों को फेस करता है तभी वो ऊंचाई पर पहुंचता है। तो मैं अस्मिता बहन से पूछना चाहूंगी, ऐसे तो आपको बहुत सारी बातों की नॉलेज है और बहुत कुछ आप पढ़ती है और इसलिए बहुत सारा अनुभव इनके पास है, तो अस्मिता बहन कोई ऐसी पर्सनालिटीज भी हमारे देश में, दुनिया में ऐसी कोई पर्सनालिटीज जिनके जीवन में इतनी चुनौतियां आई और फिर वो एक ऊंचे शिखर पर पहुंचे, अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा।
ऑर्गेनाइजेशन के फील्ड में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर बहुत चुनौतियां आई लेकिन उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन का उदाहरण हम सुने उससे पहले मैं चाहूंगी जबकि हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने परमात्मा को एक बल एक भरोसा बनाकर हर चुनौती को आगे क्रॉस करते गए, इसी पर आधारित एक बहुत सुंदर गीत है, जो गीत हम सुनेंगे डॉक्टर ब्रह्मा कुमारी दामिनी बहन जी से। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप कृपया मंच पर आए। आपने उन्हें कल भी सुना, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत सुंदर राजयोग शिक्षिका है, साथ साथ गीत लिखती भी हैं और परमात्मा ने आपको गीत गाने की एक बहुत सुंदर कला दी है। तो बहुत सुंदर गीत सुनेंगे, ये मत कहो खुदा से।
ओम शांति। बहुत ही सुंदर हमारी माधुरी दीदी जी ने हिस्ट्री बताई हमारी संस्था की। वैसे भी कोई सत्कर्म करता है या फिर कोई ऊंचाई पर उठता है तो चैलेंजेस तो आती हैं। जैसे एक विमान जब ऊपर उठता है तब हवा के विरुद्ध ही उड़ान लेता है, परंतु जिसके साथ परमात्मा हो उसके लिए वो चैलेंजेस बहुत छोटी हो जाती है। एक बहुत ही सुंदर गीत आपका सुना हुआ, बहुत सुंदर शब्दों के साथ।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आंखें तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल सरोवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हर किस हुआ पड़ा है, कभी हार ना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना ना कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक साथ गए, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है।
धन्यवाद,
बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां पुनः डॉक्टर दामिनी बहन के लिए। कहते हैं ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है, जिसका साथी स्वयं भगवान उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सिखाया जाता है कि प्रति पल हम महसूस करें कि वो सर्वशक्तिमान भगवान हमारे साथ है, ताकि हर चुनौती हमें सहजता से अवसर महसूस हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं आपको बताना चाह रही हूं। आपने सुना होगा 3M कंपनी, जो एडहेसिव्स बनाती है, बहुत सारे मेडिकल एड्स बनाती है। ये 1960s की बात है। डॉक्टर स्पेंसर एक एडहेसिव बना रहे थे, लेकिन उनसे कोई गलती हो गई। उनका लक्ष्य था कि एक ऐसा एडहेसिव बनाए जो बहुत मजबूत हो, जिसे जहाज बनाने में भी काम में लिया जा सके। परंतु उनसे कोई गलती हो गई, जिसके कारण जो गोंद बना, जो एडहेसिव बना, वो बहुत ही कमजोर था, और उसकी क्वालिटी ऐसी थी कि उसको चिपकाओ तो वो बहुत हल्के रूप से चिपकता था, और बिना कोई निशान छोड़े वो सहजता से छूट भी जाता था। तो उनके लिए, पूरी कंपनी के लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिस लक्ष्य से उसे बनाया गया, वो उस काम तो आ ही न सकी, और कई वर्षों तक उस एडहेसिव को किसी और कार्य में यूज भी नहीं किया जा पाया। लेकिन 1974 में, लगभग 6 साल के बाद, उनके एक साथी वैज्ञानिक थे, आर्ट फ्राई, वो एक गायक थे। तो जब वो गाना गाते थे तो किताब उनके हाथ में होती थी, और एक एक गाना निकालने के लिए, जैसे हम बुकमार्क का यूज करते हैं, तो वैसे वो बुकमार्क्स रखा करते थे, और वो बुकमार्क अक्सर जब वो पन्ने पलटते थे, वो बुकमार्क नीचे गिर जाते थे, और उन्हें वो पन्ने निकालने में कभी कभी दिक्कतें होती थी। और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने मित्र के द्वारा बनाए हुए उस गोंद का ख्याल आया, और उन्होंने सोचा, क्यों ना उस गोंद को मेरे इस असुविधा को सहज करने में यूज किया जाए। तो उन्होंने छोटे छोटे चिट्स लिए, उस चिट्स में गम को चिपकाया, और उसे बुक्स के बीच में, जहां जहां उन्हें पन्ने खोलने होते थे, वहां वहां उन्होंने चिपका दिया, और उनका कार्य बहुत ही सहजता से होता गया। तो ये चुनौती, ये नाकामयाबी, एक अवसर में परिवर्तन हो गई। कौन सा अवसर बता सकते? यस, उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज वो कंपनी 4,000 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस करती है, स्टिकी नोट्स बनाती है, जो आज हर ऑफिस में कार्य में आता, आज घरों में काम आता, आज जब कोई स्टेज प्रोग्राम करते हैं तो हम कुर्सी पे, सोफे पे उसे नेमस्लिट के रूप में चिपका देते हैं, ताकि लोगों को सहजता हो। तो जो कंपनी फेलियोर का सामना कर रही थी, आज वो कंपनी के प्रोडक्ट हमारे पूरे भारत के 100 करोड़ लोगों के रेगुलर रोजमर्रा के यूज में आ रही है। तो चुनौती क्या बन गई? अवसर बन गया। तो ये समय समय की बात होती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी। एक बार एक किसान बहुत परेशान था वेदर चेंजेस से। कभी ज्यादा बारिश हो जाए फसल खराब, कभी कम बारिश हो जाए फसल खराब, कभी बारिश हो ही ना फसल खराब। तो उसने भगवान को प्रार्थना किया और कहा, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि मौसम ऐसा हो जाए जो मेरे फसल के बिल्कुल अनुकूल हो। तो आपको पता है, कोई बहुत दिल से यदि भगवान की प्रार्थना करता है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान तथास्तु कर देते हैं। तो भगवान ने उसे कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। मौसम अनुकूल हो गया, उसने गेहूं बो रखा था, कुछ दिनों के बाद उसने देखा बहुत अच्छे फसल लगे हुए हैं, बड़ा खुश था। देखते देखते खुश होता रहा, फसल काटने का समय आया। जब वो फसल काटने के लिए जाता है तो क्या देखता है, कोई बताएंगे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब वो फसल काटने गए तो उन्होंने देखा कि बाहर से तो छिलके हैं लेकिन उसके अंदर दाने नहीं हैं। फिर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु ये आपने क्या किया, ये फसल में दाने तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा, तुमने चाहा था कि मौसम फसल के अनुकूल हो जाए, मैंने वही किया, इन्हें जूझने का कोई मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण जो शक्ति उस अनाज में भरनी चाहिए वो शक्ति नहीं भर पाई। कहने का भाव है, परिस्थितियां हमारे अंदर छिपी पोटेंशियल को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। तो बताइए, परिस्थितियां आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। और एक दूसरा फायदा परिस्थिति के आने से, जो हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर बहुत गहराई से महसूस किया, जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं हम भगवान को उतना ज्यादा याद करते हैं। यस और नो? यस और नो? तो एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी चार भाई इधर आएंगे, जो पहले एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए थे प्लीज वो ना आए, उनके अलावा चार भाई इस तरफ आएंगे और चार बहनें इस तरफ आएंगे। आप पहले मंच पे आ जाइए, फिर आपको एक्टिविटी क्या है बताते हैं। वी नीड ओनली फोर ब्रदर्स एंड फोर सिस्टर्स, फोर सिस्टर्स दिस साइड एंड फोर ब्रदर्स दैट साइड। जी आ जाइए मंच पे। आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा और वो सिचुएशन को धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल करा जाएगा और उसमें आपको रिस्पॉन्ड करना है और प्रयास करना है आप प्रोएक्टिवली रिस्पॉन्ड करें, आप लड़खड़ाएं नहीं, आपका मन विचलित ना हो और आपके पैर भी विचलित ना हो। तो ये चारों पार्टिसिपेंट्स को एक एक पेपर दिया जा रहा है, आप उस पेपर को पूरी तरह से फैला लीजिए और उस पे खड़े हो जाइए। हाँ जी, ऑडियंस की ओर फेस करके आप खड़े हो जाइए, थोड़े थोड़ा 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 गैप से खड़े हो जाइए। हाँ, पेपर को फैला लीजिए। हाँ जी, नीचे रख दीजिए और उस पर खड़े हो जाइए। ओके, आई एम श्योर आप अभी बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। श्योर? जी, अभी आपको क्या करना है, बहुत फास्ट पेपर के दो फोल्ड करने हैं। एक बार थोड़ा सा पेपर से हट जाइएगा पीछे वन स्टेप, पेपर के दो फोल्ड करने हैं और उस पर खड़े होना है, फिर चार फोल्ड करना है उस पर खड़े होना है, फिर आठ फोल्ड करना है उस पर खड़े होना है, फिर सोलह फोल्ड करना है उस पर खड़े होना है,
स्टार्ट बोलेंगे।
फिर हाँ, जब स्टार्ट
समय स्टार्ट बोलेंगे,
थर्टी टू फोल्ड करना है और उस पर खड़े होना है।
हाथ से हाथ
और आपको अपने आप को देखना है कहां तक हम अपने आप को स्टेबल रख पाते। इज इट क्लियर टू? आ जाइए पेपर पे। जी,
पेपर पे खड़े हो जाइए।
अभी पेपर पे खड़े हो जाइए,
बोलेंगे पेपर से हटके पेपर को एक फोल्ड करेंगे फिर खड़े हो जाएंगे।
हर बारी आपको एक एक्स्ट्रा फोल्ड और करते जाना,
फिर खड़े हो जाएंगे।
क्लियर? जी, पेपर पूरा
फोल्ड करना है। नहीं नहीं, देखिए जैसे हमने स्टार्ट बोला आपको, आप पेपर से हटेंगे पेपर का एक फोल्ड करेंगे और खड़े हो जाएंगे, फिर स्टार्ट बोलेंगे तो पेपर से हटेंगे एक फोल्ड और करेंगे, तो हर स्टार्ट पे एक एक फोल्ड बढ़ाते जाना और उस पेपर पे खड़े होना है। हम जितनी बार स्टार्ट बोलेंगे छोटे से छोटा 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 होते होते आप कितने छोटे पेपर पे खड़े हो सकते हैं, बैलेंस करके बिल्कुल
गिरना नहीं,
गिरना नहीं,
आपको ध्यान रखना है कि आपको गिरना नहीं,
पेपर से बाहर पैर नहीं आना चाहिए।
ओके, टू फोल्ड, फिर फोर फोल्ड, फिर एट फोल्ड। ओके ओके, स्टार्ट। कोई अच्छा सा म्यूजिक बजा देंगे भैया,
खड़े हो जाइए उस पे।
हाँ जी, आप सभी तालियां बजाते रहे ताकि इनका उत्साह बना रहे।
स्टार्ट। नहीं अभी तो दो, हाँ आप भी और एक फोल्ड कीजिए, स्टार्ट बोला ना, स्टार्ट किया तो फोल्ड कीजिए एक और, आप जैसे भी फोल्ड कर सकते। हर बार हमको
स्टार्ट बोलना। अच्छा ठीक है, चलो 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 चलो। हाँ ओके,
नहीं
नहीं थोड़ा सा अनइवन चलता है। ओके ओके, हाँ हाँ नहीं
कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं।
अच्छा चलिए हाँ
स्टार्ट
बोलेंगे तो नेक्स्ट बोर्ड
खड़े हो
हाँ रेडी
स्टार्ट
पैर पेपर से बाहर नहीं आना चाहिए बाहर आ रहा है
स्टार्ट
जो बाहर जिनके पैर पेपर से बाहर आ रहे हैं वो प्लीज साइड हो जाइए जी
स्टार्ट
इट्स अ चॉइस यस
स्टार्ट फिर से
बहुतों के बैलेंस बिगड़ने लगे हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी
स्टार्ट फिर से करते जाइए स्टार्ट
वाओ
फिर से और फोल्ड करते जाएंगे okay. ना जैसे हम फिर से कहेंगे एक फोल्ड और करना है उसी उसी फोल्ड को नहीं है ना एक एक फोल्ड बढ़ाना है हाँ बढ़ाते जाना है स्टार्ट स्टार्ट
आपको अनफोल्ड नहीं करना है हाँ जी आप अनफोल्ड नहीं कर सकते हैं फोल्ड ही करते जाना है हाँ जी
फिर से
पैर थोड़े नीचे आ रहे हैं वैसे
फिर से स्टार्ट
आपका पैर बिल्कुल नहीं नीचे आना चाहिए
ठीक है फिर से
वाओ तालियां
फिर से स्टार्ट
क्या बात है पैर नीचे आ रहे हैं भैया गुड
फिर से
गुड
आगे और
ओके
फिर से
गुड चलिए बहुत बढ़िया इनके लिए तालियां बजाएंगे गुड अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके लिए चुनौती क्या थी और आपने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला
ओम शांति चुनौती अपने आप से थी मैंने किसी को देखा नहीं मैंने खाली मेरे पे फोकस किया कि मैं कितना कर सकता हूं कैसे कर सकता हूं
बहुत सुंदर बहुत सुंदर चुनौतियों में हम स्वयं पे फोकस करें और क्या बेस्ट कर सकते हैं अगर उसी पे हम ध्यान दें तो कुछ न कुछ तरीके निकल आते हैं तो इन्होंने नए आइडियाज लगाए कि फोल्ड करना है पर जरूरी नहीं है पूरा ही फोल्ड करें उसे तो थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते गए तो चुनौतियां और क्या करती हैं हाँ जी भैया यतिन भी आप बताएंगे
ओम शांति मैंने देखा दीदी ने जस्ट बोला कि आपके पैर नहीं हटने चाहिए तो फोल्ड करना है मैंने टारगेट पे ध्यान दिया कि मुझे रिजल्ट्स क्या अचीव करने हैं तो फोल्ड करना है जरूरी नहीं है कि हमारे माइंड में एकदम से आता है ना डबल फोल्ड कर दो तो मैं थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके स्ट्रिप्स में करता गया तो रिजल्ट क्यों कि ध्यान था कि पैर नहीं, पैर उस पर रहना चाहिए हर समय। तो अगर इफ वी फोकस ऑन द रिजल्ट तो अपनी जो प्लानिंग है, जो अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपने आप वर्क करती है।
आप कुछ सुनाना चाहेंगे भैया?
ओम शांति। तो अपने जो भी अपने चीज मिलती है, जैसे किसी जो जैसे मेरे को दिया गया कागज या फोल्ड करना, तो मैंने थोड़ी सी मेरे से ये गलती होगी कि मैंने उस कागज फोल्ड पर ध्यान दिया, ना कि मैंने अपने बैलेंस पर ध्यान दिया, जो कि मुझे मेरे बैलेंस पर ध्यान देना चाहिए था, जिससे मैं अपने को कंट्रोल कर सकता, मैं अपने रोक सकता। बस थोड़ी सी ये मेरी सी नादानी को या मेरी लापरवाही को, ये मेरी नादानी थी, मैं थोड़ा सा उस फोल्ड पर ध्यान देता तो मैं भी अपने आप को एक्टिव कर पाता और मैं यहाँ पे पूरे एक्टिवेट से आपको मैं कहता हूँ मैं ओके। हाँ
बिल्कुल, ये चुनौतियां हमें बहुत कुछ सिखाती हैं।
ओम शांति। एक्चुअली मैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, जहाँ पे हम और बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो कहीं ना कहीं पे जो हम यहाँ सीख रहे हैं आत्मा जो दिखती नहीं है फील होती है, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल की एनर्जी भी ऐसे ही है। हमको कभी करंट दिखे नहीं है बट चमत्कार बहुत सारे देखे हैं और फील किए हैं। तो उसमें एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी कभी हम कोई चीज़ करते हैं तो फेल हो जाते हैं, तो फेल जब होते हैं तो बहुत सी चीज़ें निराशा या मोटिवेशन चला जाता है। तो उसके लिए एक छोटी सी पंक्तियाँ हैं कि जिसके लिए जो ऐसा है कि जो आप कोई चीज़ हो गया, खराब हो गया, तो उसको ये चीज़ करके बुला देना है कि बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे। बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। बट हमको ये सीखना है कि अभी नया तीर लेना है, निशाना लगाना है और निशाना लगाना छोड़ना नहीं। थैंक यू। ओम शांति।
बहुत सुंदर, इन सबके लिए जोरदार तालियां।
ये जो एक्टिविटी थी ये मुझे ऐसा लगता है ये सिखाती है कि चुनौती एक ही जैसी थी देखिए सभी के लिए, पर सबका जो रिस्पॉन्ड था वो अलग अलग था, है ना। तो किसी ने थोड़ा कम लेवल पे रिस्पॉन्ड किया, किसी ने बहुत अच्छा हाई लेवल पे रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छा उसको विन किया। तो जीवन में परिस्थितियां जो, इसका मतलब हल सबका है, ऐसी कोई चुनौती या ऐसी परिस्थिति नहीं जिसका हल ना हो। बस ये है कि हमारा माइंड कितना स्टेबल है उस पर डिपेंड करता है फिर हम कैसे उसका हल निकालते हैं। इसलिए हम यहाँ सीखते हैं ना अपने मन को हमेशा कैसे रखे, पॉजिटिव रखे और उस परम शक्ति को हमेशा साथ रखे। तो मुझे एक और बात याद आती है कि सिचुएशन कैसी भी हो, जो हम ब्रह्मा कुमारीज में सीख रहे कि हमेशा उस चुनौती में ये देखो कि उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या सिखा रही ये चीज। तो जैसे हम ब्रह्मा बाबा की बात सुना रहे थे तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के समय की एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आती, शायद अस्मिता बेन को भी याद होगा, एक पत्रकार की बात। जब शुरुआत की बात थी तो एक पत्रकार थे जो संस्था के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कुछ भी लिख रहे थे, अपमानजनक बातें लिख रहे थे, संस्था की निंदा की बातें लिख रहे थे। ओम मंडली के नाम से उस समय था। तो उस समय जो हमारे इस संस्था में जो कुछ वरिष्ठ भाई आदि थे, उन्होंने पिताश्री ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा ये हमारी बदनामी कर रहा है तो हमें कुछ न कुछ एक्शन लेना चाहिए। होता है ना, अगर कोई मानहानि कर रहा है तो उस पर हम मुकदमा कर सकते हैं, केस कर सकते, कुछ तो एक्शन ले सकते। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का बड़ा सुंदर उत्तर था उनके लिए, कहा बच्चे आखिर वो भी परमात्मा का बच्चा ही है, आप बच्चे तो वो भी बच्चा है, और देखो वो बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है, फ्री में बिना धन गवाए, बिना समय गवाए, हमारी किसी एनर्जी को लगाए, वो हमारी संस्था की पब्लिसिटी फ्री में ही कर रहा है, कोई नहीं जानता है ओम मंडली को, उसकी वजह से सब जानने लग गए कि ओम मंडली भी कोई संस्था राजस्थान में है जो सिंध से आई हुई है। और उसके बाद संस्था का नाम चारों तरफ हुआ, लोग जानने लगे और फिर वही ओम मंडली जाकर ये हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था बनी। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने हमेशा सिखाया कि चुनौतियां आएंगी, चुनौतियां अपनी जगह है, बस सोच को हमेशा सकारात्मक रखो तो आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, चुनौती आपको आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटाएंगे। ऐसे ही कुछ उदाहरण में अस्मिता बेन से कह रही थी कि अब्दुल कलाम जी, जिनको हम सभी जानते हैं, और वो हमारे इस माउंट आबू कैंपस में लगभग शायद 3 बार आए हुए, उन्होंने विजिट किया है, काफी जुड़ाव था उनका संस्था से, इतना अच्छा व्यक्तित्व, हर कोई आज उनको प्रेरणा स्रोत मानता है। तो कोई भी व्यक्ति आसानी से ऐसे ही प्रेरणा स्रोत नहीं बनता, कुछ तो जीवन में ऐसी चुनौतियों का सामना करता है, तभी वो एक ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। तो हम अस्मिता बहन से सुनना चाहेंगे, अस्मिता बहन अगर उनके जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद हो तो हमारे साथ शेयर करेंगे।
हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी जब 23 साल की उम्र के थे, उनका एक सपना था, किसे मालूम है? एट द एज ऑफ 23 ही हैड अ ड्रीम। हाँ जी, 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 उनका सपना था कि मैं पायलट बनूं, और वो एयरफोर्स में गए, उन्होंने एग्जाम लिखा, 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया, लेकिन सीटें 9 ही थी, और वे 10वें व्यक्ति थे जो पायलट नहीं बन पाए। सो ही फेस्ड फेलियर, लेकिन वो जीवन में रुके नहीं, वो अपने मुकाम पे आगे से आगे बढ़ते गए, और हम सभी जानते हैं वो क्या बने, भारत के एक बहुत सम्मानीय पद, प्रथम नागरिक का पद उन्होंने प्राप्त किया, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या होते हैं? इंडियन आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। वो मिले जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, उनसे मिले, और उन्होंने कहा कि आई वॉन्ट टू लर्न फ्लाइंग। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। उन्होंने उन्हें 6 महीना ट्रेनिंग दिया, और उन्होंने Sukhoi-30 को उड़ाया। बजाइए ताली जोरदार। इसलिए कहा जाता जहां चाह है वहां राह है। इसीलिए आध्यात्मिकता सिखाती है कि हमें चुनौती से कभी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये चुनौतियां हमें आगे से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, हमें उन अवसरों को ले लेना है। तो मैं एक बहुत सुंदर गीत के लिए पुनः अनुरोध करूंगी, डॉक्टर दामिनी बहन हमारे बीच आएंगे और एक बहुत सुंदर गीत गाएंगे, पर वो गीत आपको सिर्फ बैठकर सुनना नहीं है, तो क्या करना, साथ में आपको खड़े हो जाना है, उस गीत के साथ साथ गुनगुनाना है, और उस गीत में आपको झूमना भी है। सभी तैयार हैं? सभी तैयार हैं? चलिए अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और पुनः तालियों से स्वागत करिए डॉक्टर दामिनी बहन जी को।
ओम शांति। कौन कौन यहाँ आके बेफिक्र हो गया? घर की चिंता यहाँ याद आती है? नहीं, एकदम बेफिक्र है। बाबा के घर जो आता है वो एकदम बेफिक्र बादशाह बन जाता है ना? तो जब यहाँ से जाएंगे तो भी बेफिक्र होके जाएंगे। निश्चिंतता और निर्भयता, ये हमें परमात्मा सिखाते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर गीत है, परंतु आप उमंग उत्साह से मन का तन का दोनों डांस करेंगे। दीदी आप भी आए।
माया से मुख अपना मोड़ के पवित्रता है जिस मोड़ पे
we go to go that way, we go to go that way.
कोई गलत या कहीं सही हमें किसी की परवाह नहीं मिली यहाँ है नई जिंदगी
we get to go this way, we get to go this way.
बाबा सही जिंदगी बाबा सही बंदगी बाबा से है मिली सारी खुशी हाँ ये खुशी
बाबा दिल से कहो
बाबा कहते रहो बाबा हम बेफिक्र चलते रहे चलते रहे.
बहुत सुंदर. अभी एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. 10 भाई इधर आएंगे और 10 बहनें उधर आएंगे.
जो इससे पहले और नहीं आएंगे. आए हैं कोशिश हाँ. करें वो पीछे से हमारे शांति से बैठे हुए जो गेस्ट है वो आ जाए तो अच्छा होगा. कोई भी 10 भाई इस साइड आ जाइए, 10 बहनें इधर आ जाइए, जल्दी से आ जाइए. जो नहीं आए और आना चाह रहे थे आ जाइए. हाँ यूथ आ रहे हैं, अच्छी बात है. आइए आइए और भी आइए. इधर 10 बहनें आ जाइए.
जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वही आएंगे. ये बहुत इजी वाला गेम है जो हम छोटे बच्चों को भी कराते हैं. आई होप आप आसानी से कर लेंगे. अच्छा आपको हाथ पकड़ के राउंड में खड़ा होना है.
बोलना है आपको.
ओम शांति. मेरे में शक्ति तो नहीं थी बोलने की लेकिन दीदी ने इतनी पावर भर दी कि मुझे संघर्ष के ऊपर कुछ बोलने के लिए कहा गया. जैसे कृष्ण भगवान ने अपनी बहन कुंती को बुलाया, कृष्ण भगवान ने अपनी बहन कुंती को बुलाया क्या बोल दीदी जैसे हम भाई बहन हैं तो भगवान से. तो दीदी ने पूछा भगवान से तो भगवान ने कहा कृष्ण भगवान ने मांग दीदी आज तुझे क्या चाहिए. वो कहती मुझे इतने कष्ट दे ताकि मैं हर समय तेरा नाम ले सकूं. यही संघर्ष है और यही ये ब्रह्मा कुमारी का संघर्ष है. और शिव बाबा को बार बार जब जब संघर्ष आएगा हम बाबा को याद करते रहेंगे. ओम शांति.
बहुत बढ़िया. उन्होंने कुछ खुशी धन संपत्ति सुख न मांगकर कहा मुझे और कष्ट दे दीजिए. तो कृष्ण ने पूछा कि और कष्ट क्यों चाहिए, इतने कष्ट काफी नहीं थे क्या. उन्होंने कहा जब कष्ट थे तभी तो आप साथ थे, तो आपका साथ हमेशा चाहिए इसलिए मुझे और कष्ट दीजिए. बहुत सुंदर बात आपने सुनाई. अभी ये दो ग्रुप हमारे खड़े हैं.
अभी आपको साथ छूटना नहीं चाहिए क्योंकि कभी भी चुनौती में यदि आगे बढ़ना है तो उसका एक बहुत अच्छा नियम क्या है, साथ छूटना नहीं चाहिए. तो ये गेम इसी पर है कि कोई किसी का हाथ छोड़ेगा नहीं. अभी आप सभी एक दूसरे के फ्रंट टू फ्रंट खड़े हैं. आपको बिना हाथ छोड़े अपनी पोजीशन ऐसी बनानी है जो आप बैक टू बैक खड़े हो जाएं. बैक टू बैक समझ रहे हैं. एक मिनट.
आपके फेस सबके पीछे हो जाएंगे उल्टे. अभी अंदर एक दूसरे की तरफ फेस है सबकी. अब एक तरफ पीठ हो जाएगी एक दूसरे की तरफ, फेस बाहर हो जाएंगे पर हाथ नहीं छोड़ना है. आपको ऐसा मूव करना है कि आपका फेस बाहर की ओर हो जाए पर आपका हाथ नहीं छूटना चाहिए. हाथ छोड़ना नहीं है. ओके भाई समझ गए. हाँ रुकिए रुकिए नहीं कर रहे, वो ट्राई कर रहे हैं. हाथ क्रॉस नहीं होना चाहिए, समझ गया ना. ठीक है ठीक है. हाथ पकड़ लीजिए आप सभी. क्रॉस नहीं होना चाहिए.
हाथ क्रॉस नहीं होना चाहिए. हाथ छूटना नहीं चाहिए. हाँ. जैसे आप आराम से पकड़े ऐसे ही बैक टू बैक पीछे पकड़ के खड़े होना है. ठीक है भैया एक बहुत सुंदर म्यूजिक बजाएंगे. यस टाइम स्टार्ट नाउ.
क्रॉस नहीं होना चाहिए. जैसे सामने खड़े वैसे पीछे खड़े होना है.
हाथ मुड़ रहा है ना, हाथ मुड़ना नहीं चाहिए. आपका पीछे वाला हाथ मुड़ रहा है ना. कुछ और तरीके सोचिए, कुछ और तरीके सोचिए।
आगे हो जाइए, आगे हो जाइए, इधर आ जाइए। क्रॉस हो गए ना आपके हाथ, जैसे खड़े थे राउंड में, राउंड ही बनना चाहिए, राउंड ही बनना चाहिए, नहीं क्रॉस नहीं होना चाहिए, राउंड ही बनना चाहिए। बस ये राउंड आपके फेस अंदर है, फेस बाहर हो जाएंगे,
थोड़ा सा बाकी है।
यस गुड, पहले बढ़िया, बढ़िया बहनों ने कर लिया। बहनों को देखा आपने कैसे किया, बहनें फिर से एक बार करके दिखाई उनको, शक्तियों की स्टेज है ना यहाँ पे, इसलिए शक्तियों ने पहले कर लिया। फिर से एक बार कीजिए, भाई नोटिस करेंगे।
आप सीधे हो जाइए एक बार,
हाँ ठीक है ठीक।
यस जोरदार तालियां। हाँ जी ट्राई करिए,
ट्राई कीजिए,
डरिए मत, डरिए मत, ट्राई करिए। बहुत सुंदर, एक बार दोनों टीम के लिए जोरदार तालियां बजाइए, आप अपने अपने स्थान पे जा सकते हैं।
ये जितनी भी सारी एक्टिविटीज कराई और जो हमने गीत संगीत किया, इन सब के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? जो चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करना, और उन चुनौतियों के अंदर से हमें क्या करना है, अवसर निकालने हैं। तो ये हमारा मूल उद्देश्य, ये थीम था, और अच्छी तरह से मुझे लगता है इस बात को सभी ने समझा होगा। लास्ट फाइनली एक छोटी सी बात, एक बार एक मूर्तिकार जिसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई, पत्थर की मूर्ति बनाई, और उस सुंदर मूर्ति को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा कि तुमने इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना दी? तो कैसे बनाई होगी वो सुंदर सी मूर्ति, पत्थर की एक सुंदर सी मूर्ति कैसे बनाई? छेनी हथौड़ी से ठोके लगा लगा के। यस, कोई और उत्तर दे सकता है इसके अलावा? ये तो कॉमन उत्तर है बिल्कुल। यस, उस मूर्तिकार का उत्तर था कि मूर्ति मैंने कहाँ बनाई, मूर्ति तो पहले से ही इस पत्थर के अंदर थी, मैंने तो सिर्फ मूर्ति के ऊपर जो वेस्ट चीज थी उसको हटाया, मूर्ति बाहर आ गई। हम सब ब्रह्मा कुमारीज में यहाँ पे जो 7 डेज का कोर्स करते हैं, आपको भी सुबह में शिविर होता है ना एक सेशन, तो उस शिविर के अंदर, उस कोर्स के अंदर जो बेसिक बातें सिखाई जाती है उसका उद्देश्य ही क्या है? हम सब जो आत्माएं हैं, हमारी जो इनर मास्टरी की बात कर रहे, तो आंतरिक जो ऊर्जा, आंतरिक शक्ति, माना हमारे अंदर सारी वैल्यूज है, वो स्ट्रेंथ है, वो ताकत है, वो शक्ति है हमारे अंदर, सिर्फ उसके ऊपर नेगेटिव बातें, नेगेटिव वातावरण, नेगेटिव परिस्थितियां, सब चीजों का एक आवरण चढ़ा हुआ है सिर्फ। हम वैसे नहीं है जैसे क्रोध, गुस्सा आता है, इरिटेट होते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं, एक्चुअल में ये हमारी नेचर नहीं है। हमारी बेसिक नेचर क्या है? शांत स्वरूप, ये शांति, प्रेम, सुकून, ये हमारी बेसिक नेचर है, जो हमारे अंदर की मूर्ति जिसके ऊपर बहुत सारा आवरण चढ़ा हुआ है, जो मेरा अपना नहीं है। तो यहाँ जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, बेसिकली जो अनवांटेड चीजें अंदर ऊपर में जमा है उन चीजों को उतारने के लिए है, ताकि वो सारी निकल जाए। और हम भी जो ईश्वर की बनाई हुई सुंदर मूरत है,
कहते हैं ना, मनुष्य इंसान जो है ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो हमारी वो मूरत जो बाहर उभर कर आए, इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें मदद करता है। और जब वो आंतरिक हमारा स्वरूप, जो नेचुरल नेचर है मेरा, जो वैल्यूज से भरा हुआ है, वो जब उभर कर सामने आता है, तो फिर चुनौती चुनौती नहीं रहती बल्कि खेल बन जाती है, हमारे आनंद की वजह बन जाती है, जीवन में आगे बढ़ाने का सोर्स बन जाती है। तो इसके लिए आज हम देखें, हमारे अंदर वो चीजें हैं, पर फिर भी कोई चुनौती आती है तो हम घबरा जाते हैं, हलचल में आ जाते, डिस्टर्ब हो जाते बहुत जल्दी, घुटने टेक देते परिस्थिति के सामने, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, ये मैं नहीं कर सकती हूं, ये कैसे हो सकता है, मुझ में ताकत नहीं है, मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्या ये मेरी नेचर है? नहीं, मेरी नेचर तो कैसी है? यस, आई कैन डू, मैं सब कर सकती हूं, मैं जीत सकती हूं, मैं सफल हो सकती हूं, ये मेरी बेसिक नेचर है। पर ये जो कमजोरियां जो बाहर से हमारे अंदर आई है, ऐसे हमें यहां आध्यात्मिक ज्ञान में सिखाया जाता है, शब्दों का हम प्रयोग करते हैं कि ये सब माया की चीज है, मैं नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं हो सकता, मुझ में ये कमी है, ये सब माया की रावण की चीजें हैं। और मेरी अपनी चीज क्या है? जो मेरी वैल्यूज है, 7 वैल्यूज, कल के लेसन में आपको बताया होगा ना, तो वो मेरी अपनी चीज है, तो मुझे अपनी चीज को संभालना है। तो और जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई उसको निकालना है, तो उसके लिए हमें मदद कौन करता है? मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन क्या है? अल्टीमेट सोर्स के साथ, सुप्रीम सोर्स के साथ कनेक्ट होना। हम सबने गीत सुना, गाया, झूमे भी कि परिस्थितियां बड़ी नहीं, मेरा खुदा बड़ा है। तो हम भगवान के आगे ये अर्जी न डाले बार बार, भगवान ये सिचुएशन आई, भगवान ये परिस्थिति आई, मैं क्या करूं, परंतु परिस्थितियों को कहे कि तुम्हारी क्या औकात है, जो मेरे साथ है वो इतना बड़ा है कि तुम तो तिनके के समान हो उसके सामने, तो तुम क्या बिगाड़ लोगी मेरा। ये अंदर से हमारे आए, तो वो है इनर मास्टरी, अंदर की उस सोर्स को जगाना। तो मेडिटेशन इसमें हमको मदद करता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में बेसिक फोकस किया जाता है, जो हमारा बेसिक 7 डेज का कोर्स, यानी आध्यात्मिक ज्ञान, नॉलेज और मेडिटेशन। क्योंकि दो चीजें हमारी लाइफ में जरूरी है, लाइट एंड माइंड। जब हम कभी यात्रा में जाते हैं कहीं, तो हमारी गाड़ी में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें चाहिए होती है, एक तो गाड़ी में फ्यूल चाहिए, माइंड चाहिए, ईंधन चाहिए, ताकि हम लक्ष्य तक पहुंच सके। और अगर रात का सफर है तो गाड़ी में लाइट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम रास्ते को ठीक से देख सके। पर सिर्फ लाइट होने से भी काम नहीं चलेगा, और सिर्फ माइट यानी फ्यूल होने से भी काम नहीं चलेगा, दोनों चाहिए। क्योंकि जब आप रास्ते को देखेंगे तब तो उसको ओवरकम करेंगे। तो हमारे पास कई बार लाइट तो है, यानी बहुत सारी नॉलेज है हमारे पास, कहते हैं नॉलेज इज द लाइट, पर वो कौन सी नॉलेज? यहां जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें बेसिक मिल रहा है वो लाइट है, जो हमें जीवन में दिखाता है चुनौती कौन सी है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इससे कौन सा हम फायदा ले सकते हैं, ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है। पर इन सब को ओवरकम करने में मेडिटेशन फिर हमें वो माइट देता है, इसलिए मेडिटेशन इज माइट कहा जाता है। तो दोनों चीजें लाइफ में लेकर चलना जरूरी है, लाइट एंड माइट, ज्ञान और योग। तो अभी हम लास्ट में 3 मिनट मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे, पर हमने ओवरऑल ये जो सेशन किया इसमें से हमें एक एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, ताकि इस एक्शन प्लान को हम अपने साथ ले जाएं और उसका इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में पूरा टाइम कर सके। तो मैं आपको बहुत ही सहज रूप में ABCD के रूप में बता रही हूँ, जिसको याद करना भी आपके लिए सहज हो जाएगा। सबसे पहला ए से एक्सेप्ट द रियलिटी, जो भी सिचुएशन लाइफ में आती है, जो भी चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहले उनको एक्सेप्ट कीजिए। क्योंकि जो कुछ भी मेरे सामने आया है ये मेरे ही अपने कर्म का प्रभाव है। देखिए, कई बार कोई कहता है ना, ईश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया है, फलाने ने मेरे साथ कुछ बुरा किया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। कोई किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, क्योंकि मैं जो करती हूं कहीं ना कहीं आज या कल मुझे अपने ही किए कर्म का रिजल्ट मिलता है, मतलब जो मैं बीज बो रही हूं उसका फल मुझे मिलता है, तो इसका मतलब मेरे साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा है, मेरा किया मुझे मिल रहा है। इसलिए सबसे पहले एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट द रियलिटी, जो सच्चाई है उसको स्वीकार कीजिए। सेकेंड आता है बी से, बिलीफ इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, मुझे खुद पर इतना विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू, मैं ये कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मैं चुनौतियों का सामना कर सकती हूँ, मेरे पास वो शक्ति है, मेरी आंतरिक ऊर्जा मेरे साथ है, स्वयं परमात्मा शक्ति मेरे साथ है, ये स्वयं पर पूरा विश्वास हो, फेथ हो अपने आप में। हाँ, हम कौन है? शेर के बच्चे हैं, सुदेश दीदी जी ने बताया ना कि हम बकरी के बच्चे नहीं है, जो मैं करे, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं ये नहीं कर सकती हूं, नहीं, हम शेर के बच्चे हैं। तो चुनौतियों को दहाड़ लगाइए, जो चुनौतियां आपकी दहाड़ से भाग जाए। तो अपने आप में विश्वास, और तीसरी चीज आती है क्रिएट द बेस्ट रिस्पॉन्स, क्रिएट द बेस्ट रिस्पॉन्स। चुनौतियों को देखिए और सोचिए कि इसका रिस्पॉन्स सबसे अच्छा क्या हो सकता है, अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स हो सकता है, पर कब? जब आप अंदर से शांत रहेंगे तब अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है। जैसे पानी अगर बहुत स्थिर है, शांत है, तो प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियर दिखता है, लेंस अगर स्टेबल हो गई तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखती है। ऐसे मन जितना शांत होगा चुनौतियों का रिस्पॉन्स आपको उतना अच्छी तरह से स्पष्ट नजर आएगा। तो मन को शांत कैसे रखें? डेली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, कोई चीज की लगातार प्रैक्टिस और अभ्यास से हम परफेक्ट बन जाते हैं। कोई छोटी सी बात की लगातार प्रैक्टिस करो तो आप परफेक्ट बन सकते। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम पढ़ रहे थे, अस्मिता बहन ने मुझे सुनाया तो उनकी जगह मैं सुना रही हूं, कि एक बार एक 10 साल का बच्चा, उसको ताइक्वांडो सीखने का अंदर में बहुत शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसके अंदर उसका लेफ्ट हैंड कट गया, बिल्कुल कंधे से कट हो गया, पर उसके अंदर फिर भी वो जोश था कि मुझे ताइक्वांडो सीखना है। तो एक पहुंचे हुए गुरु थे, उनके पास वो गया और उनसे कहा कि मुझे ये सीखना है, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? उन्होंने ऊपर से नीचे उसे एक बार देखा और उसके चेहरे को देखकर और उसके अंदर का जोश देखकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। और उन्होंने उसे कहा कि मैं सिखाऊंगा जरूर, पर मुझे कभी प्रश्न नहीं करना, कोई मैं जो सिखाता हूं सीखते जाना। तो लगातार वो सीखता गया, उन्होंने उसे एक ट्रिक सिखाई और कहा, जाओ इसको प्रैक्टिस करो। वो उस ट्रिक को, उस दाव को प्रैक्टिस करता गया, एक महीना, दो महीना, छह महीने हो गए। वो सोचता रहा अंदर कि मुझे दूसरा दाव क्यों नहीं सिखा रहे हैं, एक ही ट्रिक, एक ही दाव को प्रैक्टिस करने के लिए कह रहे। वो बार बार अभ्यास करता रहा। टूर्नामेंट्स आए और टूर्नामेंट्स में फिर उसका भी नाम उन्होंने लिख दिया, और जब खिलाड़ी मैदान में उतरे तो सामने जो प्रतिद्वंद्वी था वो तो बिल्कुल हेल्दी था, पर इसका तो लेफ्ट हैंड नहीं था, पर थोड़ी देर में ही वो राउंड उसने जीत लिया और करते करते फाइनल्स भी उसने जीत लिए। फिर वो अपने गुरु के पास गया और कहा कि मेरा तो लेफ्ट हैंड नहीं है और ऊपर से आपने मुझे एक ही दाव सिखाया, छह महीने से एक ही दाव तो मैंने प्रैक्टिस किया, पर ये टूर्नामेंट्स में जीत कैसे गया? तब उन्होंने उससे उत्तर दिया कि मैंने जो तुम्हें दाव सिखाया ये सबसे बेहतरीन दाव था, और इसकी तुमने इतनी इतनी प्रैक्टिस की, उसमें इतने परफेक्ट बन गए कि इस पूरे जापान के अंदर तुम्हारा कोई भी इस ट्रिक में सामना नहीं कर सकता था। और यदि किसी खिलाड़ी ने, तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने अगर ये दाव तुम्हारे ऊपर अपनाया तो नेचुरली तुम्हारी किक लगते हुए ऐसा नीचे गिरेगा कि उठ नहीं पाएगा, और यदि उठना भी होगा उसे तो उसे तुम्हारा लेफ्ट हैंड ही पकड़ना पड़ेगा, तभी इस दाव का उल्टा हो सकता है। पर कोई भी खिलाड़ी जब तुम्हारा लेफ्ट हैंड पकड़ने के लिए हाथ ऊपर करता है तो तुम्हारा तो हाथ ही नहीं है ना, तो कैसे उठेगा? तो मैंने तुम्हारी कमजोरी को कामयाबी में बदल दिया। तो कई बार हमारी छोटी छोटी चीजें, प्रैक्टिस कोई कमियां भी है, पर मेडिटेशन के लगातार अभ्यास से हम इतने परफेक्ट बन सकते हैं कि हम बहुत कमजोर है अभी, छोटी छोटी बातों में डर जाते, भयभीत होते, पर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस से इतने सक्षम हो जाएंगे कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। तो सबसे जरूरी है अभ्यास। तो इसलिए आपको बार बार यह अभ्यास कराया जाता है। रात को भी आपको गुड नाइट वाला मेडिटेशन कराया जाता है, अर्ली मॉर्निंग भी अमृत वेला जिसको कहते हैं वो मेडिटेशन कराया जाता है। हर सेशन में 2-3 मिनट सभी मेडिटेशन कराते ताकि आप इसे अच्छी तरह से यहाँ से सीख के जाए, इसका इतना अच्छा अभ्यास अपने अंदर रच बस ले ऐसा कि आप जब अपने कार्यक्षेत्र पर जाए तो कहीं भी रहे पर आप कनेक्ट रहे उस एनर्जी से, सुप्रीम एनर्जी से, उस परमात्मा पिता से, और उनसे शक्ति लेकर हर चुनौती को फेस करते आगे बढ़ते जाए। तो हमारी यही शुभकामना है आप सभी के लिए कि आप जब यहाँ से जाए तो बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे संकल्प दृढ़ता पूर्वक अपने अंदर लेकर जाए और जीवन में चुनौतियां खड़ी है आपके लिए तैयार, कि ये तैयार होकर आ रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस करके आ रहे तो आपके साथ बराबरी का खेल खेलने के लिए चुनौतियां आएंगी, पर मुझे उम्मीद है कि आप सब विजेता बनेंगे जी। ABC नहीं, 3 काफी है जी। D से डेली मेडिटेशन, बहुत अच्छा यतीन भाई के लिए तालियां, इतनी अच्छी बात है, डेली मेडिटेशन करना जरूरी है।
ओम शांति। आई एम रघुनाथ मिश्रा फ्रॉम उड़ीसा, साउथ उड़ीसा। एक्चुअली 20 साल पहले मैं इसी मंच में जो एक स्टोरी सुना था, आज मेरे यंगस्टर भाई को लिए वही मैं स्टोरी, शायद स्वामीनाथन भैया ने बोले थे उस टाइम, एक छोटा सा स्टोरी है 1 मिनट का। 3 आदमी एक ही काम कर रहे थे एक जगह पर, क्या कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। 3 आदमी पत्थर तोड़ रहे थे, शायद आप लोग से कोई भी सुना होगा और वो भी शायद रिपीट हुआ होगा इसी स्टेज में। तो कई बाहर से एक आदमी आए और पहला आदमी से पूछे, भैया आप क्या कर रहे हो? वो गुस्से से बोला, बहुत गुस्से से बोला, आप दिख नहीं रहे मैं पत्थर तोड़ रहा हूं ना, अब पूछते हैं क्या कर रहे, तो बहुत गुस्से में है। ये 3 आदमी जो है उतना 6 से 7 घंटा काम करेंगे और उतना ही उनको वेज मिलेगा, तीनों को सेम टाइम काम करना है, सेम वेज मिलेगा। तो पहला आदमी जो है वो बहुत गुस्से से काम कर रहा था तो इसे गुस्से से जवाब दिया। फिर दूसरा आदमी को पूछे, भैया तुम क्या कर रहे हो? वो बोला, भैया क्या करेंगे, घर में बाल बच्चे है, यहाँ कुछ काम करके पैसा लेने से उनको खिलाऊंगा। तो मतलब उसका और कोई एम नहीं है, वो शाम को कुछ पैसा मिलेगा तो उसका फैमिली को, वो फिर फैमिली चलाएगा, वही उसका उम्मीद है। फिर तीसरे आदमी को पूछे, भैया आप क्या कर रहे हो? ये बोला, मैं तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, ये जो पत्थर मैं तोड़ रहा हूँ ना, यहाँ पर आगे कुछ महीने के बाद एक मंदिर बनने वाले हैं, इसी मंदिर में ये जो मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ, ये मंदिर का बाहर का जो कंपाउंड वाल है, ये कंपाउंड वाल का दाहिने कॉर्नर में ये पत्थर लगेगा, इसलिए मैं उसको वो पत्थर को उसी हिसाब से तोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब है 3 आदमी वही काम कर रहे हैं, वही वेज मिल रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग ये है और इसका विचार है, इसका ये जो है इसका पूरा मतलब लगन से काम कर रहा है और उसी का हिसाब से वो अपना काम को एंजॉय कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।
बहुत सुंदर। जब हम किसी कार्य के महत्व को समझते हैं तो उतने ही अधिक मोटिवेशन के साथ हम कार्य कर सकते हैं। तो आज के सत्र को हम कुछ मिनट के मेडिटेशन के साथ समापन करेंगे। आप सभी से अनुरोध, कमर सीधी करके बैठेंगे और सामने जो ज्योति बिंदु है आप उसे देखेंगे। आपको पता हो ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है, जिसका अभ्यास हम खुली आंख करते हैं, जिसके बारे में स्पष्टीकरण आपको और अधिक रूप से कल मिलेगा। तो चलिए सुंदर सुंदर विचार देंगे अपने मन को। मन के विचारों पर गौर करें और देखें मेरे मन में क्या चल रहा है। जैसे ही आप विचारों पर गौर करते हैं, मन के विचारों की गति धीमी होती जा रही है। मैं अपने अंदर इस आध्यात्मिक परिसर में असीम ऊर्जा का अनुभव कर रही हूं। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मस्तक के बीच विराजमान एक सूक्ष्म ज्योति। मेरा ध्यान पूरी तरह से मस्तक के बीच केंद्रित है। अपने अंतर्मन के चक्षु से देखे स्वयं को, एक बहुत छोटा सा चमकीला सितारा। असीम ऊर्जा से भरपूर फुल ऑफ पोटेंशियल मेरे भीतर शांति है। परिस्थितियां कैसी भी हों, आज मैं दृढ़ संकल्प करती हूं मुझे शांत रहना है। विपरीत परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मुझे खुश रहना है। जीवन का एक सुंदर सा लक्ष्य आज मेरे सामने स्पष्ट है। हर चुनौती को चीर कर मुझे आगे बढ़ जाना है। जीवन के इस लंबे सफर में स्वयं भगवान मेरे साथी हैं। मनी मन बोले, स्वयं भगवान मेरे साथी हैं, स्वयं भगवान मेरे साथी हैं। उनका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। उनकी दिव्य अनंत किरणें मुझ पर बरस रही है। मैं उनकी शक्तिशाली किरणों के छत्र छाया के नीचे संपूर्ण सुरक्षित हूं। मेरा मन शांत है, स्थिर है। ये ऊर्जा मस्तक के बीच चमकती हुई आत्मा से निकलकर पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। मस्तिष्क की असंख्य कोशिकाएं सफेद प्रकाश से तेजोमय प्रकाशमय हो गए और धीरे धीरे ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रही है, पैरों की उंगलियों तक। देखें अपना पूरा शरीर प्रकाशमय, और इस प्रकाशमय शरीर में मस्तक के बीच चमकते हुए मैं ज्योति बिंदु आत्मा। एक दीपक की तरह प्रकाशित महसूस करे ये ऊर्जा मुझसे मेरे चारों तरफ फैल रहा है।